نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدنا علما اللهم فقهنا في الدين اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا اللهم انفعنا بما علمتنا وَعَلِّمْنَا مَا يَنفَعُنَا وَزِدْنَا عِلْمًا آمین یا رب العالمین. آج کی جو آیات ہیں ان میں تین اہم چیزیں آج انشاءاللہ تعالی ہم دیکھیں گے. پہلی اہم چیز ان سب لوگوں کے لیے جو مقروض ہیں, قرض میں کسی طرح پھنسے میں ہیں, تو ان کے لیے بہت ایک سمجھنے نسخہ آ رہا ہے کس طرح قرض سے نکلا جائے. دوسری اہم چیز, آپ لوگوں کا ایک سوال ہوتا ہے ہمیشہ کہ ہم غیر مسلموں کے ساتھ دوستی رکھ سکتے ہیں یا نہیں, آج اس کا بھی آپ کو جواب ملے گا. نمبر تین, جو لوگ یہ چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان سے محبت کرے, ہر ایک کی ظاہر ہے کس کی یہ خواہش نہیں ہوگی, تو جس کی بھی یہ خواہش ہے آج بتا دیا جائے گا ان آیات میں کہ اس کو کیا کرنا. ظاہر ہے آپ اللہ سے محبت کرتے ہیں تو یہ چاہیں گے اللہ تعالیٰ بھی آپ سے محبت کرے, لیکن اس کے لیے کچھ کرنا پڑے گا نا. تو انشاءاللہ یہ تین اہم ٹاپکس ہم آج انشاءاللہ دیکھیں گے. آیت نمبر 23 سے 32 سورۃ آل عمران. الم تر الی الذین اوتوا نصیبا من الکتاب, کیا تم نے نہیں دیکھا ان لوگوں کو جو کتاب کا ایک حصہ دیے گئے. یہ کون لوگ ہیں جن کو کتاب دی گئی تھی؟ جیسے ہم پہلے بھی سورہ بقرہ میں بھی پڑھ چکے ہیں بنی اسرائیل کے بارے میں, تو یہاں پہ بھی مدینہ کے ارد گرد یہود قبائل آباد تھے, اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں بار بار ان کی مثال دی ہے یہودیوں کی, بنی اسرائیل کی, کہ ان کے یہ کام تھے. ہمیں کیوں بتائے گئے؟ ہم سورہ بقرہ میں اچھی طرح پڑھ چکے ہیں کہ وہ پہلے امت مسلمہ ہوا کرتے تھے, پہلی وہ چنی ہوئی امت تھے, لیکن پھر ان کو اس آنر یا اس جو عہدہ تھا اس سے ان کو معزول کر دیا گیا, وہ فائر ہو گئے, اور اس کے بعد یہ جگہ امت مسلمہ کو ملی. اب چنی ہوئی امت یہ ہے امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم, تو ان کو سمجھایا جا رہا ہے کہ ایسا نہ ہو تم بھی اسی راستے پہ چلنے لگو جس راستے پہ وہ چلے تھے. اب یہاں پہ بھی ان کی ایک بات کو ہائی لائٹ کیا گیا کہ وہ کیا کرتے تھے, ان کا طرز عمل, ان کا بیہیویئر, ان کا ایٹیچیوڈ اپنی کتاب کے ساتھ کیسا تھا. تو کیا تم نے نہیں دیکھا ان لوگوں کو جن کو کتاب کا ایک حصہ دیا گیا؟ یہ کیوں نہیں کہا گیا اوت الکتاب, کتاب کا ایک حصہ کیوں کہا گیا؟ اس لیے کہ کافی ساری کتاب تو انہوں نے چینج ہی کر دی تھی, اصل کتاب تو ان کے پاس تھی ہی نہیں. اور پھر ویسے بھی ان کے علماء کے پاس سمجھنے تھوڑا سا ہی علم تورات کا رہ گیا تھا نا, وہ اصل کتاب کے جو احکامات تھے ان کو تو پوری طرح جانتے ہی نہیں تھے, سمجھتے ہی نہیں تھے. تو جن کو کتاب کا ایک حصہ دیا گیا, یعنی تھوڑا سا علم اس کتاب کا ان کو مل گیا, اب کیا ہے؟ یدعون, وہ بلائے جاتے ہیں, الی کتاب اللہ, کتاب اللہ کی طرف. اب اس کے دو معنی ہیں, پہلا مراد ہم کتاب اللہ سے اگر لیں تورات, تو وہ اس کے کانٹیکسٹ میں دیکھتے ہیں کہ کیا معنی بنتا ہے. وہ جب تورات کی طرف ہی بلائے جاتے ہیں, ان کو تورات کی طرف فیصلے کے لیے بلایا جاتا ہے, تو ان کا ریاکشن کیا ہوتا ہے؟ نہیں, کس وجہ سے بلایا جاتا ہے؟ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ, تاکہ وہ کتاب ان کے درمیان فیصلہ کرے. تو ان کا ریاکشن کیا ہوتا ہے؟ ثُمَّ يَتَوَلَّى فَرِيقٌ مِّنْهُمْ, تو منہ موڑ جاتا ہے ایک گروہ ان میں سے. کتاب کے معاملے میں ان کا بیہیویئر کیا ہے کہ منہ موڑ دیتے ہیں, کتاب کو کچھ ایسی بڑی چیز نہیں سمجھتے اس کے اوپر عمل کرنے کو. दूर भागते हैं उससे, वह मुअरिदून, और वो एराज करने वाले हैं कि किसी तरह हमें इसके ऊपर ना ही चलना पड़े। तो अब ये देखते हैं, एक तो इसका शाने नजूल भी देखते हैं। कहा जाता है कि खैबर के रहने वालों में, वो यहूदी थे वहां पे मूव हो गए थे, उनमें एक मर्द और एक औरत ने जिना किया और शादीशुदा जानी की सजा उनकी किताब में भी रजम थी, यानी स्टोन टू डेथ थी इनकी सजा, संसार करना। लेकिन वो जानी चूंकि बहुत बड़ी फैमिली से थे, इसलिए यहूदियों ने उनको संसार करना मुनासिब नहीं समझा और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में मामला पेश किया। उनको ये उम्मीद थी कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास इस सजा में हो सकता है कुछ कमी मिल जाए, लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दोनों को रजम करने का हुक्म दे दिया। तो उनके बड़े बड़े कुछ आलिम थे, इस सजा को सुन के बोले, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपका फैसला गलत है, इनके लिए संसार करने का हुक्म नहीं है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरे तुम्हारे कौल का फैसला तौरात से हो सकता है, तौरात ले आओ। वो बोले, आपने इंसाफ की बात कही है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम में तौरात का सबसे बड़ा आलिम कौन है? उन्होंने कहा कि एक आदमी है जो फिद का बाशिंदा है, उसको इब्ने सूरिया कहते हैं, तो वो हमारा बहुत बड़ा आलिम है। तो वो जो यहूदी थे उन्होंने इब्ने सूरिया को बुलवा लिया, वो मदीना आ गया। जब वो आया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा उससे कि तुम इब्ने सूरिया? उसने कहा जी हाँ। फरमाया, क्या तुम यहूदियों के सबसे बड़े आलिम हो? उसने कहा लोग ऐसा ही समझते हैं मुझे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तौरात का वो हिस्सा मंगवाया जिसमें रजम का हुक्म था और फरमाया इसको पढ़ो। इब्ने सूरिया ने तौरात पढ़नी शुरू की और जब आयत रजम आई ना तो अपना हाथ उस पर रख दिया और उसे आगे पढ़ने लगा, उसको स्किप ही कर दिया। हजरत अब्दुल्ला बिन सलाम, आपको पता है वो रिवर्टेड थे, यहूद से यहूदी थे, मुसलमान हुए थे, तो उनको तो पता था, वो भी बहुत बड़े आलिम थे। तो वो कहने लगे, या रसूलल्लाह ये आयत रजम को छोड़ गया। फिर अब्दुल्ला बिन सलाम ने खुद उठ के उसका हाथ आयत रजम से हटाया और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को और यहूदियों को, बाकी यहूदियों को पढ़ के सुनाया कि इसकी सजा ये है। इस फैसले के बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दोनों को संसार कर दिया और यहूदी नाराज होकर लौट गए। इस पे अल्लाह ताला ने आयत नाजिल फरमाई कि देखो इनको एक हिस्सा किताब का दिया गया है और इनको जब इनकी ही किताब की तरफ बुलाया जाता है तो ये उसको भी नहीं कुछ समझते। किताब इसलिए है ताकि किताब से फैसला लिया जाए, किताब बताए। देखिए किताब किस लिए होती है, ये सिर्फ आपके लिए सवाब हासिल करने के लिए, कोई जंतर मंतर नहीं है कि बस अब हमने इतने कुरान खत्म कर लिए, हमने ये कर लिया। किताब अल्लाह ताला ने एक कानून भेजा है कि इसके ऊपर अमल किया जाए, इसको फॉलो किया जाए, लेकिन ये लोग क्या करते हैं, इसी के फैसलों से कतराते हैं जो किताब अल्लाह ने इनकी तरफ भेजी है। और दूसरा हुक्म, दूसरा अगर इससे लिया जाए, युदाउना इला किताब अल्लाह, अगर इससे मुराद किताब अल्लाह से कुरान लिया जाए, तो इनको अगर कुरान की तरफ दावत दी जाती है, ये जो अहले किताब हैं, जो यहूदी हैं, अगर इनको बुलाया जाता है कुरान की तरफ ताकि कुरान इनके दरमियान फैसला कर दे, क्या फैसला करेगा कुरान कि हक पे कौन है और बातिल पे कौन है, तो वो कुरानी फैसले को भी नहीं मानते। कुरान तो फैसला कुन किताब है ना, यहूदा नासारा का बताता है कि ये हक पे नहीं है, मगर वो इस फैसले को समझते ही नहीं, कुछ इससे मुंह मोड़ जाते हैं। तो यानी इनका अपनी किताब से भी यही रवैया है और कुरान से भी है। अच्छा, इसी के थोड़ा सा आप इसके अंदर ये भी देखें कि आज मुसलमानों का क्या हाल है। इनके पास एक किताब है कुरान, इनको कुरान का इल्म दिया गया, कुरान इनके पास आया, और जब मुसलमानों को युदाउना इला किताबिल्लाह बुलाया जाता है अल्लाह की किताब की तरफ, किस लिए बुलाया जाता है, ताकि अल्लाह की किताब इनमें फैसला करे कि हक क्या है, तो क्या कहते हैं, नहीं सियासत तो हम अपने मुताबिक करेंगे, नहीं हमारी इकोनॉमी तो हमारे मुताबिक चलेगी, नहीं हमारी अदालतों में कोर्ट्स में तो ब्रिटिश का कानून चलेगा, नहीं हमारी पार्लियामेंट हमारे लिए फैसले करेगी, जो बिल पार्लियामेंट में मंजूर हो गया वही चलेगा। जब अल्लाह का कानून मौजूद है تو کسی انسان کا لایا ہوا قانون کیسے چل سکتا ہے؟ یہی اللہ کی کتاب کا مقصد ہوتا ہے نا کہ اللہ کا حکم آ جائے تو کوئی اور قانون اس کے آگے نہیں ٹھہرے گا۔ یہ تو جاہلیت ہے اگر اللہ کے قانون میں آپ کسی غیر کا قانون ماننے لگے۔ افا حکم الجاہلیت یبغون، اللہ تعالیٰ نے سورہ مائدہ آیت نمبر 5 میں فرمایا کیا یہ لوگ جاہلیت کا قانون مانتے ہیں؟ تو ان لوگوں کو بھی دیکھ لو، ان کے پاس بھی کتاب تھی، وہ کتاب ان کے لیے بہت ریسپیکٹیبل تھی، یہ نہیں کہ وہ اپنی تورات کی ریسپیکٹ نہیں کرتے تھے، وہ بہت زیادہ اپنی تورات کو ریسپیکٹ دیتے تھے، بلکہ ان کے بڑے بڑے عالم بس اپنے پاس کتاب رکھتے تھے، کسی اور کو کتاب عام لوگوں تک نہیں پہنچنے دیتے تھے، کیونکہ یہ اتنی ہائیلی ریسپیکٹیبل ہے کہ یہ عام لوگوں تو اس کو سمجھ ہی نہیں سکتے، جان ہی نہیں سکتے، اس کو صرف علماء تک رہنے دیا جائے، اتنی وہ تورات کو بڑی اہمیت دیتے تھے۔ لیکن حال یہ تھا کہ وہی تورات اگر کوئی حکم دیتی تھی کہ یہ کرو یہ نہیں کرو تو اس کو ماننا ہی نہیں۔ تو جب ہم اپنی کتاب کے حکموں کو ہی نہیں ماننا تو پھر کتاب کس لیے ہے؟ ہاں صرف رسپیکٹ کرنے کے لیے، اوپر رکھ دینے کے لیے، اور باقی ٹائم جب کتاب فیصلہ دے کہ بھائی دیکھو ایسے زندگی گزارو، عورتوں تم اس طرح سے رہو، تم ایسے یہ کھاؤ گے یہ نہیں کھاؤ گے، یہ پہنو گے یہ نہیں پہنو گے، ایسے تمہاری اکانومی چلے گی ایسے نہیں چلے گی، حلال یہ حرام یہ، تو ہم کہتے ہیں کہ نہیں یہ تو نہیں ہم سے ہو سکتا، تو کیا ہم نہیں منہ موڑتے؟ کیا ہم نہیں اعراض کر رہے؟ آج ہمیں یہ باتیں اس لیے بتائی گئیں، دیکھو انہوں نے ایسا کیا تھا، تم نہ اپنی کتاب سے ایسا کرنا، لیکن ہم وہی چیز کر رہے ہیں، کیا فرق رہ گیا؟ آج ہم نے بھی کتاب کا قانون نہیں مانا، نہ ہمارے ملکوں کے اندر وہ قانون چلتا ہے، صرف ایک ہی ملک ہے دنیا کے اندر جہاں پہ اللہ کی کتاب کا قانون رائج ہے، اس کے علاوہ تو کوئی بھی ملک نہیں ہے، سب اپنے اپنے قوانین بنا کے بیٹھے ہیں، اللہ کی کتاب کو تو پیچھے ڈال دیا، اور نہ ملکوں میں نہ انڈیویجول لائفز میں ہمیں اس کتاب کو اس قابل سمجھتے ہیں کہ اس سے فیصلہ لیں، کتاب کیا کہتی ہے، نکاح کے بارے میں کیا کہتی ہے، طلاق کے بارے میں کیا کہتی ہے، پھر آپ کے مہر اس کے بارے میں کیا کہتی ہے، وہ ہم فیصلے نہیں لینا چاہتے، میاں بیوی کے تعلقات کے بارے میں کیا کہتی ہے، وہ ہم اپنے قوانین چلانا چاہتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ ہمارے لیے ایک بہت یعنی ایک لمحہ فکریہ ہے، ایک بات غور کرنے کی ہے کہ ہمارے بیہیویئرز ٹورڈز آر بک کیا وہی تو نہیں ہو گئے جو یہود کے تھے اور جن کو کنڈیم کیا گیا قرآن؟ ذالک بانہم قالو، یہ اس وجہ سے ہے، یہ وہ کیوں کرتے تھے کہ کتاب سے پہلو تہی کیوں کرتے تھے، ذالک یہ بیکاز بھی اس وجہ سے ہے کہ بے شک وہ کہتے تھے لن تمسن النار الا ایام معدودات، ہم نے تو آگ میں جانا ہی نہیں، اگر گئے بھی تو گنتی کے چند دن کے لیے جائیں گے بس، ہم کیسے آگ میں جا سکتے ہیں، اللہ کے اتنے لاڈلے ہیں، ہم اتنے پیارے ہیں، نحنو ابنا اللہ واحباہو، ہم اللہ کے بیٹے ہیں، اس کے لاڈلے بیٹے، اس لیے کہتے تھے، یہ نہیں کہتے تھے کہ وہ اللہ معاف کرے، اپنے آپ کو اللہ کے بیٹے سمجھتے تھے، بلکہ یعنی لاڈلے ہونے کے اس میں، کہ جیسے بیٹے انسان کو بڑے لاڈلے ہوتے ہیں، پیارے ہوتے ہیں، تو ہم اس طرح سے ہیں، اور کہتے تھے کہ ہم کیوں آگ کے اندر جائیں گے، ہمارا تو فلاں فلاں ہمیں بچا لیں گے، اور پھر ہم اگر آگ میں گئے بھی تو صرف اتنے دن کے لیے جائیں گے جتنے دن ہم نے بچھڑے کی پوجا کی تھی، مطلب خود ہی سے اپنی باتیں بنائی ہوئی، کس نے ان کو کہہ دیا کہ صرف اتنے دن کے لیے جاؤ گے، یا کس نے ان کو آ کے بتا دیا تم اتنے لاڈلے ہو، تم نے تو آگ میں کبھی جا ہی نہیں سکتے چاہے تم جو مرضی کرو۔ تو یہ جو ان کا کام تھا نا کہ اللہ کی کتاب کے حکموں کو پیچھے ڈال دیا، اس سے کوئی فیصلہ نہیں لینا چاہتے تھے، اپنے خود ہی فیصلے کرنے بیٹھ جاتے تھے، جو ان کے علماء ہوتے تھے جب ان کے پاس لوگ جاتے تھے کہ آپ ہمیں کوئی فتویٰ دیں، تو دیکھتے تھے بھائی اگر یہ تو بہت امیر کبیر اور خاندانی لوگ ہیں، تو ان کے لیے اس مطابق فتویٰ خود ہی گھڑ لیتے تھے، خود ہی بنا لیتے تھے، اپنے منمانے فتوے بنائے ہوئے تھے جو دل چاہتا تھا، کتاب کو نہیں کنسلٹ کرتے تھے، کیونکہ ان کو خوش کرنا تھا نا لوگوں کو۔ یہ اس ساری کی وجہ کیا ہے، کیوں لوگوں کا ایسے بیہیویئر ہوتا ہے، وہ کتاب سے ایسے کتراتے ہیں، کیونکہ ان کا پیچھے جو بیس ہے نا اس میں خرابی ہے، اور وہ کیا ہے بیس میں خرابی، کہ جب انسان یہ سمجھنے لگتا ہے نا کہ مجھے کسی نے نہیں پوچھنا، کوئی سزا جزا نہیں ہے، تو پھر وہ بے باک ہو جاتا ہے، پھر وہ خود کو فری سمجھتا ہے کہ میں جو مرضی کروں مجھے کون پکڑے گا، ایسے ہی سمجھ لیں جیسے اگر آپ کو پتا چل جائے या ऐसे होता भी है हमारे मुल्कों में, जिन लोगों के बड़े कॉन्टेक्ट्स होते हैं ना बड़े बड़े लोगों के साथ, कोई सियासतदानों के साथ, तो फिर वो अपने आप को आजाद समझते हैं कि हमारे पर कोई सजा नहीं लगेगी, हम चाहे रेड लाइट तोड़ें, चाहे हम किसी को पीट दें, मारें, कुछ भी करें, हमें कौन पकड़ सकता है, मेरे ताल्लुकात फलां के साथ हैं, मैं तो बच जाऊंगा। तो फिर देखा है कि वो उनके हालात क्या होते हैं, वो तो कानून को कुछ समझते नहीं। इसी तरह जब इंसान को ये पता होगा कि क्यामत आ भी जाए तो मेरा क्या बिगड़ेगा, मैंने तो सीधे जन्नत में जाना है, मुझे क्या फर्क पड़ता है, तो आप बताएं कि वो इंसान क्या कभी सीधा चल सकता है, उसको क्या मुसीबत पड़ी हुई है कि वो एक पाबंद जिंदगी गुजारे। देखें जो दीन है वो कुछ रिस्ट्रिक्शंस लगाता है, वो एक बाउंड जिंदगी गुजारने के लिए आपको बाउंड कर देता है, यानी एक आप आजाद नहीं रहते, वो कहता है नहीं ये लिमिट है, इससे आगे नहीं जाना। आपको दीन कहता है कि नहीं ये हराम है, इसमें नहीं जाके मुंह मारना, तो दीन तो आपको बाउंड कर देता है, तो उनको क्या जरूरत है कि एक बाउंड जिंदगी गुजारें और दीन को इतना अपने ऊपर लागू करें। वो कहते हैं ठीक है, वहां पे भी जाएंगे तो सीधे सीधे जन्नत में चले जाएंगे, कोई मसला ही नहीं। तो उनका ये अकीदा था, और किस लिए अकीदा था कि वहरहुम फी दीनहिम मा कानू यफ्तरून, धोखे में डाल दिया था उनको उनके दीन के बारे में जो उन्होंने झूठ घड़े हुए थे, जो झूठ घड़े हुए थे ना उसकी वजह से वो धोखे में थे। और वो झूठ क्या थे, यही झूठ थे ना कि वो ये सोचते थे कि एक तो ये झूठ था कि हम तो आग में थोड़े दिन रहेंगे और उसके बाद निकाल लिए जाएंगे, ये भी झूठ था कि हम अल्लाह के बड़े लाडले हैं, और ये भी झूठ था उनका कि हम ही हिदायत याफ्ता हैं। हमने पिछले पारे में पढ़ा था ना सूरह बकरा में कि वो सोचते थे कि जो जो यहूदी होगा या जो नसरानी होगा वो ही हिदायत पे है, अब बाकी सारे वो तो सब गुमराह हैं। तो ये इन्होंने सारे खुद ही झूठ घड़ घड़ के खुद ही एक ना यानी फॉल्स इनकी एक होप्स या कह लें, इफ्तरा कह लें, झूठे अकीदे कह लें, ये सब उनके झूठे अकीदे थे। तो अल्लाह ताला ने फरमाया कि ये उन जाहिर है इंसान अपने दिल को तसल्ली देने के लिए तो कुछ ना कुछ तो घड़ेगा ना। तो आप बताएं कि जिस बंदे का ये अकीदा हो जाए, जिसने झूठ खुद ही घड़ लिया हो कि मैंने तो आग में रहना नहीं, अगर बिल फर्ज ला महला अल्लाह दिखाने के लिए सब लोगों को हमें आग में डाल भी देगा ना तो फौरन निकाल लेगा, क्योंकि वो अपने प्यारों को थोड़ी आग में डालेगा। मुझे बताएं वो क्यों दुनिया में इतनी मुश्किल उठाएगा, कुर्बानियां क्यों देगा, सही पे चलने के लिए, हलाल खाने के लिए वो इतनी तगोदो क्यों करेगा, क्यों ना वो जैसा मन चाही जिंदगी गुजारे, जैसा दिल करे वैसा चले, खुद ही सोचे ना। तो ये जो बेस है ना, जब इस अकीदे में बेस में खराबी आ जाती है ना, उसको फिर क्या जरूरत है अल्लाह के कुरान से आके फैसले ले कि अल्लाह का कुरान क्या कह रहा है, दे डोंट केयर। आज देखें मुसलमानों में एग्जैक्टली सेम चीज है। आज मुसलमान का अकीदा क्या है, हमने कहा आग में जाना है, जहन्नुम थोड़ी हमारे लिए, वो तो इन काफरों के लिए है जहन्नुम। आप आम लोगों से पूछे ना, उनका यही है, हम तो मुसलमान कलमा पढ़ने वाले हैं। अब इसके बाद हम तसल्ली में आ गए, जैसे कि कलमा पढ़ना ही हमने बहुत बड़ा एहसान कर दिया, इन चीजों ने हमें इतना धोखे में डाल रखा है, इतना धोखे में डाल रखा है कि हम ये सोचते हैं कि हमने जाना है क्यामत के दिन, बस जन्नत के दरवाजे हमारे लिए खुले होंगे, सीधे हमने एंटर हो जाना, और अगर हम में से कोई चला ही गया जहन्नुम में तो फौरन ही आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसको निकलवा लेंगे, उन्होंने तो जन्नत में एंटर ही नहीं होना जब तक अपनी उम्मतियों को ना निकलवा लें। ठीक है शिफात है, लेकिन उसके बारे में आपका कॉन्सेप्ट सही होना चाहिए, शिफात किसकी होगी, किसके लिए होगी। हमने आयतल कुर्सी में भी बहुत अच्छी तरह से ये सब चीजें समझी, तो ये चीजें इंसान को धोखे में डाल देती हैं। फिर हमारे यहाँ क्या क्या चीजें घड़ी हुई है, आसान आसान नुस्खे घड़ लिए हैं ना, खुद ही बना लिए हैं, खुद ही झूठे, क्योंकि वो आसान आसान चीजें ऐसी बना ली हैं जिनसे हम अपने आप को तसल्ली दे लेते, और उनसे ये होता है कि कुछ करना तो पड़ता नहीं है, बस वो हमने कॉन्सेप्ट्स हमारे एक बन चुके हैं कि वो फलां का हम दामन पकड़ लेंगे ना, बस उसका दामन पकड़ के हमने भी जीते, उसके पीछे पीछे हमने भी जन्नत में चले जाना। नमाज पढ़ो ना पढ़ो, रोजा रखो ना रखो, कोई फर्क नहीं पड़ता। फिर हमारे और कॉन्सेप्ट्स देख लें, खुद ही घड़े में इफ्तरा परदाज़ी है ना, यानी कहीं लिखा है, कहीं तुमने देखा है, कहीं तुमने पढ़ा है ये बात, तो फिर इंसान को समझ भी है। अगर आपको कहीं पे भी इसका सबूत नहीं मिला तो फिर क्या है, ये इफ्तरा है, झूठ है जो घड़े में है, इनसे अपने आप को धोखे में डाल रहे हो। देखिए कोई इंसान धोखे में नहीं पड़ना चाहता, कोई चाहता है कि मुझे धोखा हो, कोई भी नहीं धोखा खाना चाहता। फिर ये कैसे धोखे में पड़ जाते हैं, इसलिए कि अल्लाह की किताब की तरफ नहीं आते, इससे दूर है। तो धोखे में ही है ना, क्योंकि जब अल्लाह की किताब है वो बताएगी कि राइट वे क्या है जन्नत में जाने का, राइट कॉन्सेप्ट क्या है, लेकिन जब इसकी तरफ ही नहीं आते धोखे में ही रहते रहते जिंदगियां गुजर जाती हैं इसी धोखे में। आप कहीं से तसल्ली तो लेनी है तो बस जो वो चीजें घड़ लिया। देखिए हम नमाज नहीं पढ़ते लेकिन हम लोगों की कितनी खिदमत करते हैं, हम सोशल वर्क कितना करते हैं, अल्लाह ने बस इसी से खुश हो जाना। और देखें भाई, देखें हकुकुल्लाह की क्या बात है, हकुकुल्लाह तो अल्लाह ने वैसे ही माफ कर देने, हकुकुल इबाद नहीं उसने माफ करने, बस हकुकुल इबाद पूरे करते रहो, हकुकुल्लाह की कोई जरूरत ही नहीं, वो तो हम नहीं भी करेंगे तो अल्लाह ने ऐसे ही माफ कर देना है। ये कहां से ले लिया, किसने कहा ये, क्या ये झूठ इफ्तरा नहीं है, क्या ये झूठ घड़ना नहीं है। हम तो लोगों की इतनी खिदमत कर लेते हैं, हमारे अखलाक इतने अच्छे हैं, अब हमारे अखलाक इतने अच्छे हैं तो उसके बाद हम कुरान सीखें, पढ़ें ना पढ़ें, कुरान को कोई अहमियत दें ना दें, उसके अंदर जो हुक्म हलाल हराम का है उसको कुछ समझे ना समझे, उससे कोई फर्क थोड़ी पड़ता है। हमारे अखलाक देखें कितने अच्छे, ऐसे अखलाक कहाँ, नमाजियों को हमने देखा उनके तो ऐसे अखलाक नहीं होते। हम देखें कितने अच्छे अखलाक वाले लोग हैं, हम कितने पोलाइट हैं, चलो जी इससे खुद को धोखे में डाल रखा। तो इस धोखे से निकलो, और कौन सी चीज हमें इस धोखे से निकालेगी, ये जो झूठ है, ये जो सारे है, कैसे आपको पता चलेगा कि ये झूठे कॉन्सेप्ट्स घड़े में, ये कुरान की तरफ आओगे तो पता चलेगा ना, कुरान फैसला करके बता देगा कि क्या सही है और क्या गलत है, क्या झूठ है और क्या सच है। इसी तरह और भी कई ऐसे कॉन्सेप्ट्स हैं जो हमारे आम पब्लिक में इतने आम है, इतनी मतलब बेअसूल, जिसका कोई असूल नहीं है, ऐसी शिफात का हमने खुद ही अपने जहनों के अंदर एक कॉन्सेप्ट बना रखा है, फलां शिफात करा देगा, फलां चट करा देगा, हमने फलां पीर साहब हैं उनके हम मुरीद हैं, हम फलां फिरके से हैं। अच्छा ये भी बहुत एक बहुत है, हम फलां फिरके से हैं बस, हम तो बख्शे बख्शे हैं। अब वो फिरके के अंदर हो जाना ही उनके लिए वो समझते हैं कि बस काफी है, और हर 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 फिरके वाला अपने आप को ना समझता है कि हम बस, और अगर उनका कोई पीर है बड़ा, उस फिरके का कोई बड़ा यानी जो उनका टॉप का है बंदा, तो अगर वो कोई है तो फिर तो ये समझते हैं बस उन्होंने, हम उनके मुरीद बन गए हैं, बस वो खुद ही हमें ले जाएंगे। अब ये एक लतीफा समझ लें या कुछ भी समझें, ये एक सच्ची बात है, वही तो एक आदमी ऐसे नहीं कि जो जाहिल था, लेकिन वो अपने पीर साहब के पास आया तो उसने बड़ी गर्म जोशी से उनके साथ हाथ मिलाया, उनके हाथ चूमे। अब वो काफी अरसे बाद आया था, पीर साहब को क्या पता इतने उसके मुरीद आगे पीछे होते हैं, तो पीर साहब अब पहचानने की कोशिश कर रहे हैं। अब मुरीद समझ गया कि पीर साहब ने मुझे नहीं पहचाना, तो उसने पूछा आपने मुझे पहचाना है, उन्होंने कहा नहीं मैंने तो नहीं पहचाना। मुरीद ने जवाब दिया छोड़े जी, फिर इधर ही नहीं पहचाना तो उधर क्या पहचानोगे। देखिये बात कितनी सही है कि जब हम समझते हैं ना कि ये लोग हमें वहां बख्शवा लेंगे, हम यहाँ पे बेनमाजी रहे, हम यहाँ पे रोजे छोड़ दें, हम कुछ भी करें, इन्होंने वहां, ये इनका सहारा काफी है, ये मुझे वहां पे छुड़ा लेंगे, ये तो देख लो वो तो आपको दुनिया में भी नहीं पहचानते। तो वो लोग जो समझते थे ना कि हमें भी वहां जाके आग छुएगी नहीं, अव्वल छू ही लिया तो चंद दिन के लिए, उनके भी पीछे ये बातिल नजरियात थे। अल्लाह ताला ने कुरान पाक में फरमाया मन यामल मिसकाल ज़र्रतिन खैरन यरा व मन यामल मिसकाल ज़र्रतिन शर्रन यरा, एक जर्रे के बराबर भी खैर की होगी ना तो इंसान अपनी आंखों से देख ले, और जर्रे के बराबर भी बुराई की होगी तो उसके नतीजे को भी देख ले। और अल्लाह ताला फरमाते हैं कि कोई शख्स किसी का बोझ नहीं उठाएगा ऐसा नहीं होगा कि करे कोई और भरे कोई। सूरह नजम में अल्लाह ताला ने फरमाया, लैस लिल इंसान इल्ला मा सा, इंसान के लिए सिर्फ वही कुछ है जिसकी उसने कोशिश की, मेहनत की, खुद अमल किया, वही उसको मिलेगा। और जिस जगह पे जिस किताब में ये सब कुछ लिखा हुआ है उसको कोई पढ़ता ही नहीं, कोई देखता ही नहीं। तो हम ये बड़े आराम से समझे बैठे हैं, हमने तो अपना इंतजाम किया हुआ है, हमें तो फिक्र करने की जरूरत नहीं है भाई, हम तो इनके पीछे हैं। अब बताएं जरा, जिनके पीछे आप अपने आप को समझ रहे हैं, क्या उनके लिए जन्नत गारंटीड है? आर यू श्योर कि वो जन्नत में ही जाएंगे? किसी को अगर कह दिया तो नाराज हो जाएगा कि आपने हमारे पीर के बारे में ऐसा कैसे कह दिया, लेकिन किसकी गारंटी है बताएं, सिवाय अंबिया और सहाबाए कराम के? और किसको गारंटी अल्लाह ताला ने बता दिया कि फलां तुमने तो जन्नत में ही जाना है? अगर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी प्यारी बेटी हजरत फातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से कह रहे हैं, या फातिमा एमली एमली एमली, ए फातिमा तुम खुद अपने लिए अमल करो, अपने लिए अमल करो, अपने लिए अमल करो, इसमें ना रहना कि मैं अल्लाह के रसूल की बेटी हूं। जब हजरत नूह अपने बेटे को डूबता हुआ देख के और बेबस हो जाते हैं, बिल्कुल उसको बचा नहीं सकते, जब इब्राहिम अलैहिस्सलाम अपने सक्के बाप आजर के बारे में दुआ इस्तगफार करते हैं तो रोक दिया जाता है, अपने बाप के बारे में दुआ ना करो। जब बाप बेटे के बारे में कुछ नहीं कर सकता, बेटा बाप के बारे में कुछ नहीं कर सकता पैगंबर होके, तो कोई और इंसान किसी को कैसे छुड़वा सकता? तो इसलिए दुनिया में अपने लिए खुद अमल करें, अपना खुद इंतजाम करें, ये मत सोचें कि उस दिन जाएंगे तो कोई बात नहीं, थोड़े दिन आग में रहना। तो अल्लाह ताला ने देखे सुबहान अल्लाह अगली आयत में बजाय इसके कि इनके इन गलत कॉन्सेप्ट्स का जवाब दिया जाता, अल्लाह ताला ने क्या फरमाया, फकैफा, तो किस तरह होगा, क्या बनेगा तुम्हारा, जिस तरह हम कहते हैं ना क्या बनेगा तुम्हारा, इज़ा जमअनाहुम लियौमिल ला रैबा फी, जब जमा करेंगे हम उनको एक दिन के लिए जिसमें कोई शक नहीं, क्या बनेगा उस वक्त बताओ, कैसा वो वक्त होगा, उस वक्त क्या होगा, क्या हाल होगा तुम्हारा।